الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی یہ چھٹی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار. آیات جو میں نے انتخاب کی ہیں وہ سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس کی پہلی تین آیتیں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. پہلی مجلس میں گفتگو یہ تھی کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی ذکر کرنے قابل چیز نہیں تھا, اور ہم نے یقیناً انسان کو ایک مختلف چیزوں سے بنے ہوئے نطفے سے پیدا کیا, اسے آزمانے کے لیے, اور اس کو قرار ہم نے دیا سننے والا اور دیکھنے والا. پہلی گفتگو یہ تھی کہ اتنی معمولی ابتدا کرنے والے انسان کے جس کے تذکرے کے لیے بھی کوئی موقع اور موضوع نہیں تھا, تب وہ انسان جب ایک شکل اختیار کرنے لگا اور اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو اپنا خلیفہ بنائیں اور اس کو آزمائیں, تب اس کو وہ سمیع اور بصیر ہونے کا موقع ملا اور اللہ نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. معمولی سی چیز کو ارادہ خدا کس طریقے سے بلند کرتا ہے یہ وہ آیتیں نشاندہی کر رہی ہیں. ہماری بلندی نہیں ہوتی مٹی کے ڈھیر کو انسان کی شکل دے سکتا ہے. انسان کو جس کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیتا ہے. اس کو سمیع اور بصیر بنانے کے بعد اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آزمائش ہوگی. دوسری مجلس میں آزمائش کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ وہ انسان جو ہمیشہ یہ احساس کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ فقط اور فقط آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور میری رشد, میری ترقی, میرا کمال, میری بلندی سب کے سب اس آزمائش میں سے گزرنے میں ہے. اگر کوئی انسان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے آزمانے کے لیے, تب اس کا حقیقی راستہ ڈھونڈ نکالنا, آخرت کی طرف نظر کرنا, اللہ کے ذکر کو سمجھنا, یہ سب مشکل ہو جاتا ہے, محال ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ فرمایا اللہ نے, اے رسول تم وہ قیامت کا منظر دیکھ رہے ہو جہاں پر انسان کو ایک شاہد اور ایک ہانکنے والا آگے لے جا رہا ہے. پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے, ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے پردہ اٹھا لیا, ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے پردہ اٹھا لیا, اب تم قیامت دیکھ رہے ہو. تیسری مجلس میں ہم نے کہا کہ ابتلا کی حالت میں, آزمائش کی حالت میں جو انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے تو وہ چیزیں جو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ رسولوں کو دے کر بتلا رہا ہے کہ یہ تم جیسے ہیں. اے رسول کہہ دو انا بشر مثلکم, یہ میرے لیے پردے اٹھ رہے ہیں تو تمہارے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. वरना मैं बेहतरीन मिसाल ना होता, पक्की मिसाल ना होता, आदि मिसाल होता। नहीं, जो जो जिक्र किया जा रहा है वो बुलंदी इंसान के लिए है। रसूलों के दर्जे बयान किए जा रहे हैं। रसूलों को रसूलों की सतह पर दिखता है, इंसान को इंसान की सतह पर दिखता है। रसूलों को रसूलों की सतह पर दिखता है, इंसान को मामूली इंसान को अपनी सतह पर दिखता है। मगर ये न समझना कि कयामत का मंजर तुम्हारी आंखों से हमने छिपा लिया है, तुम्हारी गफलत है कि वो मंजर तुम्हारी आंखों से छिपता है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि यही कुरान में और एक आयत थी जहां ये कहा जा रहा है कि इनकी आंखों पर हमारे जिक्र का पर्दा पड़ा हुआ है, यानी हमें याद करने की अहमियत इनको दिख नहीं रही है, हमको याद करने की अहमियत इनको दिख नहीं रही है। तो किसके लिए ये पर्दा उठता है? उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह की तरफ हरकत करना चाहते हैं। जैसे हरकत करना शुरू की, अल्लाह ने अपने जिक्र की हकीकत उन पर आयां कर दी। जैसे उन्होंने अल्लाह की तरफ हरकत करने का अज़्म व इरादा किया, कुरान इसके लिए कई अल्फाज इस्तेमाल करता है आगे की गुफ्तगू में, तो इंसान के लिए यह मुयस्सर है कि क़ियामत उसे नजर आए, अल्लाह के जिक्र की अहमियत उसे नजर आए, पर्दा उठाने को वो तैयार है। हमारे लिए मौका है कि हम रविश और तरीका जो अंबिया ने और आइम्मा ने पर्दा उठाने का बतलाया है उसकी तरफ गामजन हो जाएं। चौथी और पांचवी मजलिस में उसी बात को आगे बढ़ाया गया जहां पर यह कहा गया है कि जब इंसान अपने बदन की तरफ तवज्जो करता है और देखता है तो एक सिन साल की मुद्दत के बाद उसकी बदनी ताकत कम होने लगती है और उसकी अकली ताकत बढ़ने लगती है। उसकी बदनी ताकत लगभग 20 साल के हिसाब से जवानी को मद्देनजर रखें या उसके बाद भी अगर आप देखें तो इंसान की तवानाई बदनी हल्के 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 कम होने लगती है और उसी असना अकली तवानाई बढ़ने लगती है। अगर इंसान की बदनी तवानाई 20 साल के बाद वैसे ही बढ़ती जैसे उसकी अकली तवानाई बढ़ रही है तो 70 साल में यह क्या हो जाता, 70 साल में ये क्या हो जाता। मगर हम देखते हैं इसका उल्टा हो रहा है, 20 साल के बाद हल्के हल्के, उसके बाद 30 साल के बाद उससे जरा तेज, 40 साल के बाद उससे जरा तेज, बदनी तवानाई कम होते जाती है, कमर से इंसान फैलता है और दूसरी तरफ से सिकड़ने लगता है। ये खिलकत, ये खिलकत। अगर आजमाने के लिए ना बनाया गया हो, रूह को ताकत देने के लिए बदन को इंस्ट्रूमेंट ना बनाया गया हो तो फिर यह क्यों हो रहा है? इसका उल्टा होना चाहिए था। तो तुम अगर अपने बदन को भी देखते रहो, इसलिए कहता है हमने इनके अतराफ और इनके अंदर निशानियां रखी हैं, हमारे अंदर निशानियां हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने अंदर निशानियां देख सकते हैं, बदन की भी और रूह की भी। खारिज में मादी निशानियां देखिए और दाखिल में बदन की मादी निशानी देखिए और रूही निशानियां भी दिखने लगेंगी। मैंने इसी ज़ैल में कहा था कि इंसान का बदन, हाथ पैर और इंसान का दिमाग, ये सब आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिसके जरिए से इंसान अपने आप को आगे बढ़ाता है, चाहे वो दुनिया की तरफ आगे बढ़ाए, चाहे अल्लाह की तरफ आगे बढ़ाए, चाहे दुनिया की तरफ आगे बढ़ाए। जब मैं लफ्ज दुनिया इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कुदरत, वो चीज जो खुदा के मुकाबिल है। दुनिया से मुराद आप ये जो दुनिया हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, ले लें, जब जब अल्लाह के मुकाबले में दुनिया आती है उसका मतलब वो चीज जो अल्लाह के मुकाबले में है। वरना आदमी रिस्क के लिए कोशिश करे, अपनी इज्जत बचाए, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खानवादे को हलाल रिस्क दे, ये दुनिया ही में तो देगा। इसलिए कहा गया है कि दुनिया मजरिया है, खेती है आखिरत की। वो चीज जो इंसान को दुनिया में अल्लाह की तरफ हरकत देती है उसको दुनिया नहीं कहा जाता। वो चीज जो इंसान को दुनिया उसको कहा जाता है जो अल्लाह को पीट करने के नतीजे में दिखती है। तो इंसान जिधर चाहे हरकत करे। आयत जो आगे की थी, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हर इंसान को अपने हिसाब से ये देखना है कि कैसे आगे बढ़ूं, कहां जाऊं। अगर कियामत पेश नजर हो, इंसान की रूह के कमालात अंबिया को देखकर, तारीख को मुशाहिदा करकर, कौमों के जवाल और तरक्की पर को देखकर इंसान अगर एक जगह पर पहुंचता है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि मुझे इम्मा शाकिरन होना है, यानी कदरदानी करनी चाहिए इस हिदायत की जो मुझे मिली है, या इस हिदायत को मैं पीट कर दूं। आज की मजलिस, मैं यहां से आगे बढ़ाऊं, सरवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने यकीनन इसे हिदायत दी रास्ते की, सबील की, रास्ते की इसको हमने हिदायत दी। अब वो चाहे तो कदरदानी करे, चाहे तो नाकदरी करे। कुफर का मतलब कदरदानी नहीं करना, कोई चीज की का इनकार कर देना, उसकी इफादियत को नहीं समझना। शुक्र यानि थैंकफुल रहना और उसकी इफादियत को समझना। अगर मैं किसी को ऐसी चीज दूं जो उनके काम की उन्हें पसंद है, तो वो उसका शुक्र करेंगे। आप मुझे कुछ देंगे, मेरे काम की चीज है, मैं शुक्र करूंगा। नहीं काम की चीज है तो फॉर्मली शुक्र करूंगा, जबानी शुक्र करूंगा, दिल से नहीं करूंगा। इंसान को यहां के ऊपर जब शुक्र के लिए कहा जा रहा है, जबानी शुक्र मुराद नहीं है। अल्लाह फॉर्मल चीजों को पसंद नहीं करता, ठोस चाहता है, ठोस। कल मैंने आयत की तिलावत की थी जिसमें मगरिब या मशरक की तरफ झुकने को नेकी नहीं कहा जा रहा था, नेकी कहा जा रहा था इंसान के उस अमल को कि जो ईमान से जुड़ा हुआ है। ईमान अल्लाह पर, ईमान कियामत पर, ईमान मलाइक पर, ईमान किताब पर, ईमान नबियों पर, और उसके बाद अमल की तरफ ले जाते हुए अता करते हैं, देते हैं ज़बील खुरबा को, यतामा को, मसाकीन को, इब्ने सबील को, सवाल करने वालों को, और आजाद करने के लिए गुलामों को। ये सब ठोस चीजें। उसके बाद ईमान, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, ये सब चीजें जब करते हैं तो अल्लाह कहता है कि ये हकीकी माना में मुत्तकीन हैं। ठोस काम करेंगे तो शुक्र होगा, ठोस काम अगर नहीं करेंगे तो शुक्र नहीं होगा। रूह का सफर तय करने का इरादा करेंगे तो शुक्र होगा, बदन का सफर करने का इरादा करेंगे तो कुफ्र होगा। बदन की हरकत के लिए रसूलों की जरूरत नहीं है, इन्ना हदैनाहु सबीला की भी जरूरत नहीं है। बदन तो गिरी हुई चीजों को पसंद करता है, शहवत ख्वाहिशात नफसानी को भड़काती है, और भड़काई हुई हालत में जहन पर जो गलबा होता है वो शैतान का होता है, रहमान का नहीं होता। तो हिदायत फकत और फकत इंसान को अपने बदन को काम में लाने का तरीका सिखा रही है, अपने दिमाग को काम में लाने का तरीका सिखा रही है कि कैसे तुम अपने दिमाग में वो चीजों को हिदायत के भर लो, जिसके नतीजे में तुम्हारा हाथ अगर उठेगा तो मजलूम पर नहीं जालिम पर उठेगा। वरना तुम कभी ये गौर भी ना करोगे कि हाथ उठा किसकी तरफ रहे हो। तुम यतीम का माल खा लोगे, मैं जब तक तुम समझ ना लो कि तुम्हारा दर्जा किसी का माल खाने का नहीं है, यतीम का तो छोड़ ही दो, तब तक तुम वही करोगे। क्योंकि तुम पर जो गलबा होने वाली ताकतें हैं वो ताकतें बदन वाली हो जाएंगी। और याद रखो, हिदायत तुम्हारे दिमाग से जुड़ती है। कल मैंने ये भी इशारा किया कि इंसान अपने दिमाग को, अपने माइंड को डिजाइन कर सकता है अपनी शक्ल से, फ्रीडम दिया गया है। हाथ को, पैर को एक हद तक शेप में ला सकता है, एक हद तक। बॉडी बिल्डर जैसे मैंने कहा था, एक लेवल तक अपने बॉडी को शेप में लाते हैं, एक एक मसल पे काम करते हैं और उसको शेप में लाते हैं। उसकी एक हद रहती है, एक इंतहा रहती है, उससे आगे करने जाते हैं तो उनको नुकसान होता है और कई इस काम करने में मर भी जा चुके हैं। यानी बदन के एक्सरसाइज करके डेवलप होने की एक फिजिकल लिमिट है, उसके आगे अगर करते हैं तो या बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। जहन और रूह की बुलंदी के लिए कोई हदो इंतहा नहीं है। बदन की खवी करने की हद है, दिमाग को और रूह को खवी करने की हद नहीं है। यहां से नप्तली समझ में आता है, यहां पर आजमाए समझ में आती है कि जहां तक अपनी कोशिश करते हो कर लो, और जो कोशिश करने वाले हैं और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मगर वो कि जो तुमने कोशिश से हासिल किया है। अन लैसा लिल इंसाने इल्ला मा सआ, नहीं है इंसान की किस्मत में मगर वो कि जो उसने अपनी कोशिश से, अल्लाह के रास्ते पे सिवाय कोशिश के कुछ मिलता ही नहीं है। तो कोशिश कोशिश कोशिश। मन अराद अल आजला एक आयत, मन अराद अल आखिरा दूसरी आयत। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने आजला चाहा, दुनिया चाही, जितना मैंने चाहा उसको वो दुनिया मैंने अता कर दी, जितना मैंने चाहा उसको उतनी दुनिया अता कर दी, मगर वो कि जो आखिरत चाहता है उसको मैंने दुनिया भी दी और आखिरत भी दी। मन अराद अल आखिरत वसअ अलैहा सायह वह हुवा मोमिन फउलाइका काना सायहुम मशकुरा कुल्लन उम्मीदु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक व मा काना लि अताए रब्बिका महजूरा। वो लोग जो आखिरत का इरादा कर लेते हैं, जो चीज का इरादा करे आदमी अपनी जिंदगी लगा दे रहा है उसकी तरफ, उसे वो नजर ना आए वो उसकी तरफ जाएगा। अंधेरे में मैं आपको आकल होने के नाते, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ आगे आपको नहीं मालूम है कि क्या है, आपको कहता हूं उस आगे बढ़िए, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कहेंगे कि कुछ नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है कि खाई हो, हो सकता है कुआं हो सकता है कोई जानवर पे मैं पैर रख दूं, मुझे नजर नहीं आ रहा, ठोकर लग सकती है, गिर सकता हूं, बदनी तौर पे मुझे नुकसान होगा, तो हम ये कदम बढ़ाने से रुक जाएंगे या इस तरीके से बढ़ाएंगे कि हम पर कोई जरर ना हो। एक एक हल्के हल्के एक एक सेंटीमीटर कर पैर को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसा अंधेरा के जहां पर कुछ नहीं दिख रहा। रूह का सफर है, रूह के अतराफ अंधेरा छाया हुआ है, रूह के अतराफ अंधेरा छाया हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि हम रूह को कयामत की तरफ हरकत देना चाहेंगे, कोई आखिर ये काम करेगा? नहीं करेगा, बल्कि बुलाने वाले को पागल कहेगा। जब रसूल आते हैं और मक्के की सरजमीन पर अपना पयाम लाते हैं हिदायत का, तो सबसे पहला इल्जाम उन पर जो लगता है, अरे वो इंसान जो कहता है, कुरान की आयत कर रहा हूं, अरे वो इंसान जो कहता है कि तुझ पर नाजिल हो रहा है जिक्र, किताब नाजिल हो रही है, इन्नक ला मजनून, तू तो पागल है। कुरान कोट कर रहा है उनको, कुरान उनको कोट कर रहा है। ये कियामत कहां से आ गई जिसकी तरफ हमको हरकत करना है? हम तो बदन की जिंदगी जानते हैं, जो हम पैदा हुए हैं हम मर जाएंगे और हमको कोई उठाएगा नहीं, कुरान की आयत है। रसूल को बड़ा वक्त लगा समझाने आम लोगों को कि मैं जो कह रहा हूं मैं दीवाना नहीं हूं, कुरान की और आयत है। तुम लोग आपस में दो दो अकेले में सोचो कि ये जो तुम्हारा साथी है ना, ये पागल नहीं है, कुरान की आयत। जिस तरीके से नुतफे से इंसान बना और बनकर समीयन बसीरा हो गया, रसूल की हिदायत भी उसी कैफियत से शुरू होती है कि पहले यह साबित कर दें कि मैं दीवाना नहीं हूं, शायर नहीं हूं। कई कई कुरान की आयतें फकत इस बात पर इसरार करती हैं कि तुम्हारा साथी भी मजनून नहीं है। तो जिसको नजर नहीं आ रहा था उसको रसूल नहीं दिख रहे थे, मजनून दिख रहे थे। ये बेसत के बाद की बात कर रहा हूं। लेकिन जिसको नजर आ रहा था میں نے ذکر کیا تھا کہ مولا نے فرمایا میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، مگر یہ کہ میں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ جس کی روح کی آنکھ، دل کی آنکھ نہیں کھلی، وہ رسول کو، رسول کی رحلت ہو گئی، ظاہری طور پر دیوانہ بولتے رہے یا باطنی طور پر دیوانہ بولتے رہے، ان میں سے کچھ اقتدار بھی پا لیے۔ مصیبت یہاں پر آ گئی، اسلام کے نام پر کچھ لوگوں نے ان میں سے اقتدار بھی حاصل کر لیا، وہ کہ جو رسول کو ظاہری طور پر بات بولتے رہے، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو یہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، یہ رسول کو مجبوراً قبول کرتے رہے، اور اسی عنوان سے سورہ منافقین آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں تاکہ مومنین کو گمراہ کریں، یعنی خود کو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں، یہ تو گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اندر آ چکے ہیں۔ یہ سورے آنے اس لیے لگے کہ خطرہ ہے کہ آدمی کو جو چیز صاف نظر نہیں آئے گی اس کی طرف حرکت نہیں کرے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ہدایت آئی ہے یہ اللہ سے کس طریقے سے ہم کو قریب کر رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ جس کی طرف توجہ کرتا ہے وہ انسان کا دنیا میں اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جو روح کا لباس بنتا ہے۔ یا بنی آدما قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ دیکھو اے اولاد آدم، مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، اے اولاد آدم تم یہ اس چیز کی طرف توجہ کرو کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا، بیوٹیفل ہونے کا، بیوٹیفائی ہونے کا سبب بنتا ہے، زینت کا سبب بنتا ہے۔ کپڑے دو کام کرتے ہیں، ایک تو انسان کے شرمگاہ کو کور کرتے ہیں، دوسرے اس کے خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں۔ تو اللہ تعالیٰ بنی آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ ہم ہی نے تمہارے لیے، بتلایا جاتا ہے کہ کاٹن جو ہے، جو نیچرل فائبر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعد میں ہم جو حالی زمانے میں جو چیزوں کو، جس کو ہم پالیسٹر کہتے ہیں، یہ اب شروع ہوا ہے، اب شروع ہوا ہے، 100 سال بھی نہیں، 50 سال پرانی چیز ہے۔ اس سے پہلے زیادہ تر کپڑا کاٹن بیسڈ ہی ہوتا تھا۔ آج سے 50 سال پہلے اگر کپڑے ہم دیکھیں تو کپڑے وہ کاٹن کے ہی ہوتے تھے، پالیسٹر اس میں نہیں آتا تھا۔ تو اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کپڑے تمہارے کو جو مل رہے ہیں نا، وہ بھی ہم نے نازل کیے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بدن ہم بنا کر نطفے سے چھوڑ دیے ہیں۔ نطفہ بھی بنایا، بدن بھی بنایا، سمیع بصیر بھی بنایا، اب ہم کو تمہاری شرمگاہ ڈھانپنا ہے اور ہم ہی کو تمہارے کو بیوٹیفائی کرنا ہے۔ بدنی طور پر بھی انسان کو بیوٹیفائی کرنے کا ذمہ رحمان لے رہا ہے، دنیاوی طور پر حیا اور شرم کا، اس کی حفاظت کرنے کا بھی ذمہ اوپر والا لے رہا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد کہتا ہے لباس التقوی ذالک خیر۔ یہ تقوی کا جو لباس ہے نا، جو روح کو لگتا ہے، وہ لباس جو روح کا لباس ہے، وہ لباس کی بات یہ بدن کے لباس میں نہیں آتی۔ کبھی یہ نہ کرنا کہ بدن کے لباس کی طرف توجہ کر لینا لیکن روح کے لباس کی طرف توجہ نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے بدن کا لباس یہ سبب بن جائے کہ تم روح کے لباس سے غافل ہو جاؤ۔ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے، آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے۔ ڈیزائنر کپڑے بن رہے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف ترغیب اپنے آپ کو کر رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں کہ جو چمک اور دھمک کے اوپر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق، کس نے وہ زینت کو حرام کر دیا؟ اور نہ میں یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کر وہ جرات کر سکتا ہوں. توجہ اس کی طرف زیادہ ہے یا تخوے کی لباس کی طرف زیادہ ہے؟ وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو ترک کر کر ادھر آؤ. اللہ ترک وہی چیز کرواتا ہے کہ جس کا ضرر 100% ہو. شراب 100% اس کا نقصان حرام، زنا 100% نقصان حرام، سود 100% نقصان حرام. جہاں پر احتمال ہے اچھائی اور برائی دونوں کا، وہاں پر نہیں روکتا. اس لیے کہہ رہا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد، وہ زینت جو ہم نے انسانوں کے لیے خارج کی ہے، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، حرمت نہیں ہے. آپ اپنی پرائیورٹیز کے حساب سے اسے کیسے سیٹ کرتے ہیں. رسول سے روایت ہے رات کی گہری رات میں دو رکعت نماز میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے زیادہ اہم ہے. یہ رسول ہے، روایت ملتی ہے. دو رکعت نماز اس تمام دنیا کی دولت سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے. بار بار اشارہ ہو رہا ہے اپنی روح کی طرف دیکھو، اپنی روح کی طرف دیکھو. اگر تم اپنی روح کی طرف نہیں دیکھو گے، تم اپنا نقصان، اپنی فیملی کا نقصان اور اپنی سوسائٹی کا نقصان تینوں کرو گے. ہوگا کیا؟ قرآن وہ بھی بتلاتا ہے. ہوگا یہ کہ شیطان ان کے اعمال کو زینت بخش دے گا. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمال کو زینت بخشے گا، اور جب یہ اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں گے تو اللہ ان کے لیے ابواب کل شیء، ہر چیز کے باب کھول دے گا، ہر چیز کے ابواب باب کھول دے گا، عیش و عشرت کو عام کروا دے گا، اللہ کہہ رہا ہے. اور جب یہ اس میں ڈوبے ہوں گے اس وقت ایک دم اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور سوائے مایوسی کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. کنٹرول کہاں تک ہے دیکھیے. تم دنیا چاہتے ہو، تمہارے کو دنیا میں ڈوبا کر نکالتا ہوں. تم دنیا چاہتے ہو، ڈوبا کر نکالتا ہوں. اتنا ڈوب جانے کا موقع دوں گا دنیا میں کہ تم کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرا عذاب کہاں سے آ رہا ہے. یہ پرابلم ہمارا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے دماغ کی صلاحیت جس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، اگر ہم اس میں اچھی چیزیں نہیں بھریں گے تو آٹومیٹک بری چیزیں بھرنی شروع ہو جائیں گی. دماغ انسان کا خالی نہیں رہتا، خالی دماغ شیطان کے واسطے بہترین پناہ گاہ ہے، وہ اس کا موقع اٹھائے گا. یعنی اگر آپ پازیٹو انرجیز جنریٹ نہیں کریں گے، آٹومیٹیکلی دماغ نیگیٹو چیزوں کو ابزارب کرنا شروع کر لے گا. جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نیوٹرل نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ڈیزائن کیا گیا ہے ابزارب کرنے کے لیے، ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ڈیزائن کیا گیا ہے ابزارب کرنے کے لیے. ہدایت بھرتے جائیے، جتنا بھرتے جائیں گے اتنا کم نظر آئے گا، اور جتنی ہدایت بڑھتی جائے گی اتنی قیامت واضح ہوتی جائے گی. جیسے جیسے قیامت واضح ہوتی جائے گی، قیامت کی پر نظر رکھنے والے کو دنیا ہتھیلی جیسی دکھتی ہے، کیونکہ دنیا بنائی گئی قیامت کو مد نظر رکھ کر. دنیا انسان کی بنائی گئی ہے قیامت کو مد نظر رکھ کر. جو قیامت کی طرف نظر رکھ کے دنیا کو دیکھتا ہے وہ اسے بصیرت دے دیتی ہے، اور جو قیامت کو اپنی نظروں سے ہٹا کر دنیا کو دیکھتا ہے وہ اسے اندھا کر دیتی ہے. روایت ہے، جس نے دنیا کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیا، دنیا نے اس کو بصیر بنا دیا، سمیع بھی بنا دیا. اور جس نے یہ غلطی کر لی کہ دنیا کو अपनी नजर से देखने लगा, वो दुनिया ने उसको अंधा कर दिया। अब जब अंधा हो जाता है, कुरान कहता है फितुगियानहिम यामहून, ये लोग अपने अंधेपन में घूम फिर रहे हैं, इनको अब रास्ता मिलने वाला नहीं है। सोसाइटीज को आप देख लीजिए, आदम से लेके अब तक जो जो काम दिमाग से अच्छा हुआ है उसकी आप तहकीक करते हुए पीछे जाते जाइए। ये लोग जो रसूल को दीवाना कह रहे थे, माजल्ला, इन्होंने कौन सी सोसाइटी बना दी? क्या किया इन्होंने? ये जो रसूल को दीवाना कह रहे थे माजल्ला, ये लोग अपने बच्चियों को दफना रहे थे, बकौल कुरान के इनका तवाफ ताली और सीटी बजाने के अलावा कुछ नहीं रहा था। इबादत के बाद इतनी बदकारियां हुआ करती थी मक्के में कि मक्के को एक बदकारी का मरकज बना दिया गया था। जो इब्राहिम ने उस जमाने में जब रसूल आए थे उससे 2500 से ज्यादा साल पहले काबे को पाक किया था। इब्राहिम और इस्माइल ने कुरान में है कि पाक करो इस घर को मेरे लिए, जो पाक घर था उसका नतीजा क्या हो गया था? इन्होंने कौन सी सोसाइटी दी थी? जुल्म था, बेअदालती थी, लूट थी, कुछ भी तो नहीं था। रसूल ने आके क्या कर दिया? रसूल ने आके क्या कर दिया? पूरी दुनिया बदल डाली, पूरी दुनिया बदल डाली। जो जो कौमों में फकत दुनिया की तरफ देखकर हरकत की, आप एक कौम की मिसाल दे दीजिए कि जिसने अपने आप को बुलंद कर दूसरों के लिए मिसाल बनी हो, एक 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 भी कौम आज तक। कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ दो जनरेशन भी नहीं रहा, कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ दो जनरेशन भी नहीं रहा, खत्म हो गया। यानी ऐसे लोग जो कम्युनिज्म के आने से पहले जिंदा थे, कम्युनिज्म खत्म हो गया वो जिंदा थे। दो जनरेशन में 60 साल के पीरियड के लिए कह रहा हूं, वरना जो लोग 10 12 15 साल के थे, कम्युनिज्म खत्म हो गया 1990 के लगभग, 1918 से अगर आप लेकर चले तो उसके 60-62 साल का जो हरकत थी, सिवाय तबाही, लूट, चोरी, डकैती के कुछ नहीं किया। हालांकि अगर चाहते तो बेदीनी की मिसाल बनकर निकल सकते थे, लेकिन हुआ क्या? ख्वाहिशात नफसानी ने लीडरों की, उनके मेयार जिंदगी को आसमान तक पहुंचा दिया और अवाम की जिंदगी दूसरे उनके पड़ोसियों के मुकाबले में जब देखी गई तो बिल्कुल ही नीची। आप ईस्ट जर्मनी की जिंदगी को ले लीजिए, शायद यहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो ईस्ट जर्मनी को गए हों, और वेस्ट जर्मनी की जिंदगी को देख लीजिए, आजकल के बच्चे तो वो जानते भी नहीं। उनका मेयार जिंदगी, लोग कहते हैं ईस्ट जर्मन जब इंडिया आते थे तो कहते थे कि तुम लोग तो लग्जरी में हो। जब देखा कि लेबर क्लास की के नुमाइंदों की जिंदगी ऊपर और लेबर की जिंदगी, ये ऐनन चीज इस वक्त चाइना में हो रही है, इसी की मिसाल अब चाइना बन चुका है। जो लोग चाइना जा चुके हैं वो जिक्र करते हैं कि सिवाय एक बड़े लेबर कॉन्ट्रैक्टर के, और उनमें से कुछ लोग बड़े बड़े कारोबार, और उन कारोबार में भी अब करप्शन आना तेजी से शुरू हो गया है। एक कम्युनिस्ट पार्टी का लेटर निकला कि हमारे ऑफिशियल्स की तो आदत हो गई है करप्शन। करप्शन से बचे तो कैसे बचे? जिसको अल्लाह की इबादत में ये पूरी कायनात की दौलत से ज्यादा चीज नजर आ रही हो उसको करप्ट हो बोलिए, रुकने की बात नहीं, तवज्जो का मोहताज। जिसको अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में ये कायनात से ज्यादा दौलत नजर आ रही हो उसको करप्शन से बचने को कहा जाएगा या वो करप्शन से बचाने वाला हो जाएगा? हर वो आदमी जिसको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह का जिक्र सबसे आला चीज, जिक्रुल्लाह अकबर कुरान की आयत है, मामूली चीज नहीं है ये, आपको अल्लाह से, हमको अल्लाह से जोड़ता है ये, अल्लाह से हमारा रब बनाता है। बार बार कुरान कह रहा है अल्लाह उनको हिदायत देता है जो उसकी तरफ पलट आते हैं, और पलट आने के लिए जरूरी है कि उसकी याद करें, जिक्र करें। जिक्र का मतलब याद, अल्लाह की याद जिस पर गालिब आ गई उसको कोई कह सकता है कि करप्ट मत होना, वो कहेगा उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है। करप्शन क्या होती है, दूसरे का माल लिया कैसे जाता है बगैर वैल्यू क्रिएट किए, उसकी तलब, उस पर हक कैसे जताया जाता है वैल्यू क्रिएट किए बिना, उस पर हक कैसे जताया जाता है। करप्शन का मतलब यह है कि वैल्यू कोई और क्रिएट करता है, पैसा आप अपनी जगह ले लेते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं, आप यह कहें कि जैसे कम्युनिस्ट कहते थे कि पूरी वैल्यू लेबर क्रिएट करता है और दूसरे कोई कुछ नहीं करते, वो कम्युनिज्म कोलैप्स हो चुका है, वो चाइना में भी नहीं है, वो कम्युनिज्म कोलैप्स हो चुका है। जो ये कहता था इब्तिदा, अगर आप मार्क्स को पढ़ें कि पूरी वैल्यू जो क्रिएट होती है वो लेबर की कोशिशों से होती है, वो कम्युनिज्म कोलैप्स हो चुका चाइना में भी। अब जो कम्युनिज्म के नाम पर चल रहा है वो प्राइवेट एंटरप्राइज है, लेबर कम्युनिस्ट पार्टी प्रोवाइड कर रही है, लेबर कम्युनिस्ट पार्टी प्रोवाइड कर रही है। इस्लाम ने इस बात को कभी कबूल ही नहीं किया, इस्लाम ने इंसानी इनिशिएटिव को, इंसान की कोशिश को कम किया ही नहीं, चाहे वो दुनियावी एंगल से हो चाहे वो उखरवी एंगल से हो। तवज्जो का मोहताज, आज की मजलिस थोड़ी ड्राई जा रही है लेकिन बुनियादों को पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ने इंसान की कोशिश को दुनिया में नहीं आखिरत के लिए मामूली समझा है, नीयत पर मबनी रखा है। अगर तुम्हारी दुनिया की खोज आखिरत को मद्देनजर रखकर है तो तुम्हारी दुनिया की खोज को इबादत बोलूंगा, अगर तुम्हारी आखिरत की खोज दुनिया के लिए है कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तुम्हें बात तकवा समझें, तो वो आखिरत की खोज दुनिया की खोज से बदतर है। तुम अल्लाह को उसकी जन्नत के ताल्लुक से धोखा नहीं दे सकते, यह मौला का नहजुल बलागा में जुमला है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी कोशिशें तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे है, तुम किधर रुख करे हो। एक ही रुख साबिले कबूल है और वही रुख था कि जो अंबिया और अइमा ने बतलाया, वो रुख था अल्लाह की तरफ रुख कर देना। मशरिक और मगरिब इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्लाह की तरफ रुख कर देना, और उसी के लिए हमको डिजाइन किया गया है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नासा अलैहा, वो अल्लाह की फितरत जिस पर अल्लाह ने इंसान को बनाया। कौन सी फितरत? नेचर। फितरत का माना नेचर, अंग्रेजी में वोंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके लिए अल्लाह के नेचर के मुताबिक इंसान के नेचर को बनाया गया है। ला तब्दीला लिखल्किल्ला, ला तब्दीला लिसुन्नतिल्ला, अल्लाह की खिलकत में भी तब्दीली नहीं आएगी, अल्लाह की सुन्नत में भी तब्दीली नहीं आएगी। इंसान को कैसे कैसे अपने से रब्त देता जा रहा है, तवज्जो का मोहताज। इंसान को कैसे, पहले कहा इंसान के बनने से पहले नफख तो फी है मिन रूही, जब मैं उसके अंदर अपनी रूह को फूंक दूं तो तुम सजदरेज हो जाना। अब कह रहा है कि इंसान को मैंने अपने नेचर में खल्क किया है, और फिर कुरान में कुछ आयतों में यह भी कह रहा है, ऐ रसूल कह दो कि इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब तो सिरात मुस्तकीम पर है। तो जो चीज, जो बुनियादें अल्लाह ने इस दुनिया में डाली और अपनी रविश को, अपनी सुन्नत को रायत किया, हमसे आपसे यही तकाजा कर रहा है, उस पर आ जाओ। हमसे आपसे तकाजा कर रहा है वो सुन्नत जिसकी बुनियाद पर ये कायनात पूरी खल्क हुई, तुमको बनाया गया, तुम में मैंने अपनी रूह फूंकी, तुमको मेरे नेचर में बनाया ना, तुमको जब ये सब हो गया तुम वही उसूल पे आ जाओ जिन उसूलों पर मैं हूं और जिस उसूलों पर ये दुनिया बनी है। कोई ऐसी चीज की तरफ नहीं बुला रहा हूं जो कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरी जात, मेरी खिलकत एक बुनियाद पर बनी, उसी बुनियाद पर तुमको बुला रहा हूं, जिस बुनियाद पर मैंने ये कायनात को बनाया, जिस बुनियाद पर मैंने तुम्हें बनाया, उसी बुनियाद पर तुम्हें बुला रहा हूं। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जिंदगी की दुनिया में। अल्लाह को हटाइए सिवाय कॉन्ट्रडिक्शंस के कुछ नहीं मिलेगा, और अल्लाह को ला दीजिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन बाकी नहीं रहेगा। जब इंसान वो रूह के साथ जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जब रूह बगैर कॉन्ट्रडिक्शन के हो जाती है तो वो रूह कैसी हो जाती है हमको आइमा की जिंदगी में, अंबिया की जिंदगी में दिखता है। हम कॉन्ट्रडिक्टरी लोग हैं, हम एक चीज बोलते हैं वो एक चीज करते हैं। लिमा तकुलू माला तफलून का बुरा मख्तन इंदल्लाही अन तकुलू माला तफलून, कुरान कह रहा है तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। ये तो अल्लाह के नजदीक घिनौनी नफरत ज्यादा चीज है कि तुम वो कहो जो करो ना। कॉन्ट्रडिक्शन के बाद कॉन्ट्रडिक्शन हमारी जिंदगी में अल्लाह को हटा दीजिए आता जाएगा। हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बुरे बुरे काम करेंगे। मैं बच्चों से मुखातब हूं, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बुरे बुरे काम करेंगे। क्यों? कि हमको बुरे काम अच्छे और अच्छी बातें अच्छी नजर आती हैं। ये क्या हो गया? हमको बुरे काम अच्छे और अच्छी बातें अच्छी नजर आती हैं, ये क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हुआ या नहीं हुआ? कौन खसम खा के कह सकता है कि वो ये नहीं करता? जवानों से, बच्चों से खिताब, हम अपने लिए बिल्कुल अलग उसूल बनाते हैं, दूसरों के लिए अलग उसूल बनाते हैं। जिसके पास ताकत है वो ताकत के हिसाब से उसूल बनाता है, जो कमजोर है अपनी कमजोरी को देखकर वो अपने हिसाब से उसूल बनाता है। हर आदमी अपने तौर पर अपने कारनामों को सही बतलाता है। कोई गरीब होगा, चोरी करता है तो कहता है कि पैसे वालों के पास बहुत है, मैं चोरी क्यों नहीं करूं। कोई बात हुई, किसी के पास ज्यादा माल है तो आप उसकी चोरी कर ले सकते हैं। या कोई गरीब है कि जो अपने हक से दिफा नहीं कर सकता तो उसका माल मैं ले लूं क्योंकि वो हक से दिफा नहीं कर सकता। ये कोई बात हुई। उसूल लॉस कहां पर रहेंगे? लॉस कहीं पर नहीं रहेंगे। दुनिया के लॉस अल्लाह को निकाल के बनाया नहीं जा सकता। अल्लाह को हटा दीजिए। एक मरतबा मैं अमेरिकन स्टूडेंट्स से खिताब कर रहा था, एक ग्रुप आया हुआ था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, 20-22 साल के, लिबरल आर्ट्स का प्रोग्राम था उनका, ग्रेजुएशन कर रहे थे, लगभग 20 से 22 साल की उम्र। और उनसे मुझे गुफ्तगू करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये दीन की जो बातें आप कर रहे हैं ये चीजें थोड़ी दिनों के बाद साइंस और तरक्की कर लेगी और ये बातें सब खत्म हो जाएंगी। ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं दीन की और अल्लाह की, ये सब मफहूम माना नहीं रखेगा। साइंस इस तेजी से तरक्की कर रही है कि ये सब बातें सब खत्म हो जाएंगी। मैंने एक सवाल किया कि अल्लाह को गुफ्तगू से हटा दो, ये साबित कर दो कि कत्ल करना बुरी चीज है, बीच में अल्लाह को नहीं लाना। एक मिनट हुआ, दो मिनट हुए, मैं बोलता रहा, भाई कुछ बोलो। अरे इतनी सादी सीधी चीज मैं बोल रहा हूं, तुम लोग नहीं जवाब दे रहे हो। बीच में अल्लाह को नहीं लाना, गॉड को नहीं लाना, तुम इसको ये साबित कर दो कि कत्ल करना बुरी चीज है। उनके प्रोफेसर ने तकरीबन दो मिनट के बाद कहा, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? मैंने कहा दीजिए। उसने कहा कि देखिए, क्योंकि आपको कत्ल करना, आप मानते हैं ना कि बुरी चीज है? मैंने कहा मानता हूं कि मेरा कत्ल बुरी चीज है। तो बोले, अगर आप और कत्ल करेंगे तो आपके कत्ल होने का इम्कान बढ़ेगा या कम होगा? मैंने कहा हाँ बढ़ेगा। तो बोले, क्योंकि आपका कत्ल किए जाना बुरा है इसलिए कत्ल करना बुरा है। मैंने कहा एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं, आपने ये कहा कि क्योंकि मेरा कत्ल किया जाना बुरा है तो इसलिए कत्ल बुरा है, कत्ल करना भी बुरा है। अगर कोई इतना ताकतवर हो जाए कि उसको पता चल जाए कि मैं अगर किसी को कत्ल कर दूं तो मुझे जवाब में कत्ल नहीं किया जा सकता। और मैंने कहा कि जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट है, कहीं पर भी बमबारी करा दे, उसे खौफ होता है कि जो है मुझे मार डाला जाएगा, उसे कोई खौफ नहीं रहता। तो आपने साबित यह किया कि जिसके पास ताकत पूरी है उसके लिए कत्ल करना बुरा नहीं है, जिसके पास ताकत कम है उसके लिए कत्ल करना बुरा है। आपने यह कहां साबित किया कि कत्ल बुरा है? आपने तो उल्टा साबित कर दिया कि कमजोर को कत्ल करने का शौक नहीं रखना चाहिए, ताकतवर को सिवाय कत्ल करने के और कुछ करना नहीं चाहिए। आपने तो यह साबित कर दिया। खामोश हो गए। खामोश हो गए। उससे पहले और एक बात मैंने उनसे की थी, क्योंकि बार बार कह रहे थे कि आप बिल्कुल जो है अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे अंदाज़ा है दीन की गुफ्त कई मरतबा अहमखाना ही होती है, मगर आप मेरे और एक जवाब दे दीजिए कि आप बतलाइए कि चीज कह रहे थे कि हम बिल्कुल कोई अल्लाह जो भी चीज़ कर रहा है वो साइंस कुछ दिनों में कर लेगी, कुछ सालों में कर लेगी। ठीक है, कोई बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग हो, कोई मास्टरपीस हो, कि किसी बड़े पेंटर ने उसको पेंट किया हो, आप अगर ये बतला दे मुझे कि उस पेंटिंग का बनाना मुश्किल है या उसका ख़राब करना मुश्किल है, तो बोले बहुत आसान, ख़राब करना बहुत आसान, बनाना तो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं बनाए। मैंने कहा बात ठीक, बोले ठीक। मैंने कहा हमने अभी मैटर को डिस्ट्रॉय करना नहीं सीखा है, मादे को हम तबाह नहीं कर सकते, फॉर्म बदल सकते हैं। आप आग लगा दीजिए किसी चीज़ में, अगर जितना पानी होगा वो अलग हो जाएगा, जो उसमें मवाद रहेगा वो खाक की शक्ल में आ जाएगा, फॉर्म बदल जाएगा, मैटर आज तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एटम को भी आप टुकड़े कर दीजिए, एटम के टुकड़े कर दीजिए, फना नहीं होगा, मुख्तलिफ अज्जा फैल जाएंगे, पहले नहीं कर सकते थे आज कर रहे हैं। खुद न्यूक्लियर बॉम्ब का बनना ही जो है ये एटॉमिक एनर्जी का बनना, ये न्यूक्लियस को तोड़ने के नतीजे में होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब आप मैटर को डिस्ट्रॉय करना नहीं सीखे तो मैटर को बनाने की कैसे बात कर रहे हैं आप? तो वो पेंटिंग खराब करने वाले 3 साल वाले बच्चे से भी कमजोर हैं कि जो पेंटिंग को तो खराब कर सकता है लेकिन पूरी दुनिया उसे बना नहीं सकती। आप मैटर डिस्ट्रॉय करना नहीं सीखे हैं, आप मैटर बनाने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि बराबर हैं। कुफर इतना हो जाता है, पढ़ी लिखी मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां थे, इस कॉन्फिडेंस के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे पता चल रहा था कि दुनिया का पूरा इल्म इनके पास आ चुका है। 2 सवालात के फकत मोहताज थे कि 2 सवालात के बाद मुंह बंद कर लिए, खामोश हो गए। अल्लाह वो हस्ती है कि हम बगैर उसके दीवाने होते हैं, जबकि उसकी तरफ से बुलाने वाले को हम दीवाना कहते हैं। दीवाने हम हैं। मैंने कहा था इससे पहले भी कि रसूल बाजार से गुजर रहे थे, कुछ लोग हंसते हुए उन्हें नजर आते हैं, कहते हैं कि भाई क्यों हंस रहे हो? कहते हैं कि भाई यहां पर एक दीवाना है, मुख्तलिफ मजे मजे की हरकतें कर रहा है और हम उसको देखकर हंस रहे हैं। रसूल नजदीक आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि देखो ये दीवाना नहीं है, ये बीमार है। देखो ये दीवाना नहीं है, ये बीमार है। दीवाना वो होता है जिसने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दे दिया हो, यानी अपनी आजमाइश की कैफियत से बाहर निकल आया हो। आजमाइश की कैफियत का तारी हो जाना इंसानी जहन पर और ये कॉन्ट्रडिक्शन से निकलना, जब आप मादे की तरफ नजर करते हैं, मैटर की तरफ, एक स्टूडेंट होने के नाते 5th क्लास 6th क्लास 8th क्लास 10th क्लास इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग मेडिसिन, आप एक तरीके पर उसको नजर करना पड़ता है आप, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। वरना आपके जहन में अगर कॉन्ट्रडिक्शंस रहे तो आपको वो चीज उन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ समझ में आएगी। अगर धुआं निकल रहा हो उस तरफ कुछ मंजर हो तो मेरी नजर उस धुएं को जब तक के पार नहीं करेगी नहीं देखेगी, और जब तक धुआं रहेगा मेरा अंदाजा उस मंजर का मुबहम रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। धुआं छट जाएगा तो फिर मेरा मंजर साफ हो जाएगा, मैं साफ देख सकूंगा। अल्लाह को लाने से अपनी जिंदगी में जिंदगी का धुआं, दुनिया का धुआं छट जाता है, और जब इंसान उलूम मादी पर भी नजर करता है तो उसको वो मादा अलग रंग में नजर आता है जो कि उसके लिए मुयस्सर नहीं होता जब वो खुदा को अपने पास नहीं रखता। ये बुनियाद थी इस्लामी सिविलाइजेशन के ऊपर आने की, इंसानी जहन से कौन, और इस कारनामे में आइम्मा का बहुत बड़ा किरदार था। अगर इस एंगल से हम आइम्मा की जिंदगी का मुशाहिदा करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो हमको दिखता है कि ये वैल्यू सिस्टम के इंसान के जहन से कॉन्ट्रडिक्शंस को निकाला जाए, निकाला जाए, निकाला जाए, निकाला जाए, इस हद तक के वो अल्लाह का बंदा होकर दुनिया को देखे, दुनिया के मादे में भी गहराइयों के साथ नजर करे, ताकि दुनिया का हर जर्रा उससे बात करने लगे। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। नफक तो फी है मिन रूही, मैं जवानों को कह रहा हूं, ये मुमकिन है, ये कहानी नहीं है, पूरी सिविलाइजेशन को देख लिए ऐसे ही लोगों ने तरक्की की है। उन्वान मेरा इंसान की तरक्की में दीन का किरदार है। तरक्की हुई कैसे? जादू हो गया। एक चीज जो रसूल को कहा जाता था, शायर, जादूगर और मजनून, वो कहते थे ना मैं मजनून हूं, ना मैं शायर हूं, ना मैं जादूगर हूं, मैं तो फकत तुम्हें इल्म देने के लिए आया हूं। वो इल्म जो अल्लाह ने मुझे दिया है, आयात कुरानी आए, क्या हो गया तुमको? क्या कभी मुझे तुमने अपने सीधे हाथ से लिखते हुए देखा? मैं तो ना लिखता था तुम्हारे दरमियान, ना पढ़ता था। मैं कोई लिखने पढ़ने वाला आदमी नहीं था तुम्हारे दरमियान, तुम तो देखे हो। क्या कभी तुमने मुझे कभी अपने सीधे हाथ से कुछ लिखते हुए देखा? किसी ने नहीं देखा, तो फिर ये उलूम कहां से आ रहे हैं? मैं तो एक मुद्दत तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं, कुरान की आयत है, फिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं ये चीजें अल्लाह की तरफ से नहीं बोल रहा हूं? ये यतीम अब्दुल्ला दुनिया का नक्शा बदल दिया, ऐसे उलूम दिए, ऐसी किताब के जरिए से उसको इल्म दिया गया कि आज भी अगर कोई दीन में जान और ताकत है तो वही दीन एक रह गया है। किसे दीन मुबीन इस्लाम कहा जाता है कि जिस पर एक ही शर्त, कुरान कहता है आमनो वामिलुस्सालिहात, दो ईमान लाओ और नेक काम अंजाम दो। अगर तुम अल्लाह पर ठोस ईमान लाओगे और नेक काम अंजाम दोगे तो हमारे लिए तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत नहीं है, चाहे तुम यहूदी रहो, नसारा रहो, साबईन रहो, कोई रहो, तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाना है और नेक आमाल अंजाम देना है। अगर तुम ये कर लो तो ला इकराहा फिद्दीन, हम कोई दीन में जबर नहीं करते, हम कोई दीन में जबर नहीं करते, सख्ती से, जबर से दीन को नहीं फैलाया जाएगा। यह कुरान की रविश रही है, क्योंकि एक चीज को जैसे नेचुरली फैलना है वैसे फैले। रसूल चाहते थे कि दीन तेजी से फैल जाए, ख्वाहिश थी क्योंकि जिम्मेदारी थी। अल्लाह कहता है यार ऐ रसूल, तुम अपने आप को मारे डाल रहे हो कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, ये सच्चाई जो तुम पेश कर रहे हो वो समझते हैं कि ये झूठ है, तुमको तकलीफ हो रही है, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, उनका कसूर है। ये दुनिया को देखकर अल्लाह को देखना चाहते हैं, हम कह रहे हैं अल्लाह को देखकर दुनिया को देखो। प्रॉब्लम ये है, ये दुनिया को देखकर अल्लाह को देखना चाहते हैं, तुमको हम कहते हैं कि इनको सिखाओ अल्लाह को देखकर दुनिया को देखो। इंसान की नजरों को बुलंद करने का काम दीन कर रहा है, इंसान को इंसान बनाने का काम दीन कर रहा है। गरचे हमारे ऊपर हजार इल्जाम लगाए जाते हैं कि हम आज टेररिस्ट हैं, हम आज बुरे हैं, इंसान को कभी पावर हंग्री, ताकत को तलब करने वाला इस्लाम ने नहीं बनाया। सब दिया, गुज़िश्ता की मजलिस में मैंने कहा देने को दिया, हवस अल्लाह का बंदा नहीं रखता, दुनिया को लूटने की ख्वाहिश अल्लाह का बंदा नहीं रखता। इसकी एक वाज़े मिसाल पेश करूं, उसके बाद गुफ्तगू को तमाम। बाद अज़ रसूल अली को खिलाफत नहीं मिली, बाद अज़ रसूल अली को खिलाफत नहीं मिली, जबकि अली खुद कहते हैं कि तुम जानते हो कि इसका हकदार मैं हूं, पर नहीं मिली। एक मर्तबा जनाब फातिमतुज़्ज़हरा घर में दाखिल होती हैं, अली घर में बैठे हुए हैं, इब्तदाई जमाना है रहलत रसूल के बाद का, इब्तदाई जमाना है रहलत रसूल के बाद का। अब क्योंकि पावर किसी और जगह मुंतकिल हो गया है तो जनाब फातिमतुज़्ज़हरा से बाहर घर के तौहीन की जाती है, ऑपोजिशन हो गई है, तौहीन की जाती है। घर आकर कहती हैं या अली, तुम तो वो हो कि जिसकी बहादुरी और शुजाअत से दुश्मन के बहादुरों की नींद उड़ जाती थी, आज तुम्हें क्या हुआ, तुम घर बैठ गए हो ऐसे लोगों के मुकाबिल में कि जो बहुत तुम्हारे मुकाबिल में कमजोर हैं, बहुत तुम्हारे मुकाबिल में कमजोर हैं, तुम बैठ गए हो इस किस्म की गुफ्तगू। और आखिरी में एक जुमला जो कहती है, ऐ काश ये देखने से पहले मैं मर जाती, ऐ काश ये देखने से पहले मैं मर जाती। अली का जवाब खामोश। फातिमा को समझाते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूं वो इसलिए है कि इस्लाम बाकी रह जाए। अगर तन्हा मुझ पर जुल्म होता हो तो होता रहे। बात समझ आ जाती है फातिमा को, कहती हैं कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो नेमल वकील है, वो सबसे ज्यादा अच्छा सहारा बन सकता है। अल्लाह की बात को शौहर और जौजा के दरमियान लाकर खिलाफत के मसले को अली ने हल कर दिया। उसके बाद अजां की आवाज आती है। इब्ने अबिल हदीद जो शाफई हैं और नहजुल बलागा की सबसे वसी शर उनकी है, शरा की है, कमेंट्री की है उन्होंने, लिखते हैं कि एक मर्तबा ऐसी मौका था कि गुफ्तगू हो रही थी अली और फातिमा की, अजां की आवाज सुनाई दी। अली ने फातिमा से कहा, क्या तुम पसंद करती हो कि यह अजां का सिलसिला जारी रहे? तो कहा, हां हां पसंद करती हूं। तो कहा, मेरा खामोश रहना भी पसंद करो। ये चीज होती है अल्लाह से रब्त रखना। खिलाफत छीन ली जाए और अली अल्लाह को देखकर खामोश हो जाए। आज जो हमारे दरमियान कोशिश की जा रही है शिया सुन्नी इख्तलाफ डालने की, ये सुन्नत रसूल है ना सुन्नत अली है ना सुन्नत आइम्मा है। मुसलमान एक हैं और अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें एक किया, हमने तुम्हें एक किया। मुसलमानों में जो भी इख्तलाफ हो, मुसलमान आपस में लड़ने मरने के लिए नहीं है। अगर हम ये कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। हमारे जो बड़े मराजे हैं ये बात पर आज इसरार कर रहे हैं, चाहे वो आगा सिस्तानी हो, चाहे वो आगा खामेनेई हो। अगर मुसलमानों के दरमियान शिया सुन्नी कोई इख्तलाफ कर रहा है तो वो शैतान है, मोमिन नहीं है। शैतान है, मोमिन नहीं है। और आगे की एक मिसाल, और एक मिसाल देता हूं कि जहां पे अली ने तलवार खींच ली। खवारिज के जिसकी तादाद 12,000 की थी, हालत ये नमाज ऐसी पढ़ते थे कि घुटनों पर और पेशानी पर गट्ठे बन चुके थे। एक एक नमाज पढ़ी जा रही है तो सूरह बकरा के साथ पढ़ी जा रही है, डेढ़ डेढ़ घंटे की, दो दो घंटे की एक एक नमाज। बड़े जाहिद, बड़ी अल्लाह की और कुरान की गुफ्तगू करने वाले, लेकिन अली जानते थे कि अगर ये अकल नहीं रखने वाले इस्लाम के कंट्रोल करने वाले हो जाएंगे तो इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। इस किस्म की दीन की तरवीज कर रहे थे कि जो आज आप आइसिस को करते हुए देख रहे हैं, आज आप आइसिस को करते हुए देख रहे हैं, ऐनन वही। अब समझ आया खवारिज किसको कहते हैं? उनसे लड़ना जरूरी है। शिया सुन्नी इख्तलाफ करना गलत है। वो किस्म की फिक्र जो पेश की जा रही है, वो किस्म की फिक्र इस्लाम को बदनाम कर रही है। इस्लाम को उस किस्म की फिक्र बदनाम कर रही है कि जो खुश मुकद्दस, पूरी दुनिया जहन्नमी, हम फकत जन्नती। खवारिज का यही वो था, मौला से कह रहे थे कि हमने जो सुल्ह की माविया से, वो गलत किया, और क्योंकि गलत किया हमने कुफर किया, आपने भी कुफर किया, हमने भी कुफर किया, तो हम भी तौबा कर चुके हैं, आप भी तौबा कीजिए। अगर कोई चीज उनके समझ में आ जाती कि गुनाह है तो सामने वाले को काफिर कह देते। आज ये तकफीरी इसी को कहते, तकफीरी का मतलब वो लोग जो दूसरों को काफिर का खिताब देते रहते हैं। वो फिक्र काबिले تنبیہ ہے اس فکر کے مقابل میں اسلام کو مل جڑ کر شیعہ سنی سب مل کر ان کو کھڑا ہونا ہے، ورنہ ہم کو سیولائزڈ قوموں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو سیولائزڈ قوموں کی فہرست سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ سیولائزڈ رہنے کے مستحق ہیں اپنی کتاب کی طرف توجہ کم کرنے کی طرف سے، یہ آج ہمارا حال ہو گیا اور ہمارے اسپوکس پرسن آئسس جیسے ہو گئے۔ ہم کو پلٹنا ہے، ہم کو پلٹنا ہے، اور اسی عنوان سے ہم کو کردار رسول کے ساتھ ساتھ کردار علی کی بھی ضرورت ہے۔ کردار رسول کے ساتھ ساتھ کردار علی کی ضرورت ہے، کردار علی کے ساتھ ساتھ کردار حسین کی ضرورت ہے، کہ جہاں پر دنیا کو جب دیکھتے تھے تو مخالفت کرنا ہوتا تھا تو فقط اللہ کے لیے کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کسی میں قوت نہیں تھی کہ خوارج کے خلاف اٹھ کھڑے، کسی کے پاس نہیں تھی، میں نے اس فتنے کی آنکھ میں سوراخ کر دیا، کسی کے پاس نہیں تھی۔ پاگل تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، آپ جو دیکھ رہے ہیں آج ہزاروں کی تعداد میں تھے، پاگل تھے، نام اسلام کا لے رہے تھے، اتنے مقدس تھے کہ کوئی آدمی ان کے سامنے اسلام کے نام پر تلوار اٹھانے والا نہیں تھا، کیونکہ ظاہری مقدس چہرے نظر آ رہے تھے۔ علی کے ہاتھ میں وہ طاقت تھی کہ یہ ظاہری پردہ اسلام کا فاش کر کر، اس کو ان کا نقاب نکال کر، ان کے کیفیت کو ظاہر کر کر ان کا خلا خما کر دے۔ جنگ نہروان کے بعد پھر سر نہیں اٹھا سکے، اور اسلام میں جب کے بعد اب یہ فتنہ وجود میں آیا ہے، جب کے بعد اب یہ فتنہ وجود میں آیا ہے، یا میں کہوں لایا گیا ہے۔ ہم کو چوکنا ہونا چاہیے، ہمارے ممبر ہماری درسگاہیں ہیں، ہمارے ممبر ہماری درسگاہیں ہیں۔ اگر ہم آج کے احوال اور حالات کو کنارہ کش کر کے گفتگو 1400 سال پرانی کریں، جس کا کوئی آج کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو، تو ہمارا جوان گمراہ ہو جائے گا، راستہ نہیں پائے گا۔ اور قیامت حسین میں وہ حرارت ہے کہ جو تا قیامت دلوں میں ایمان جگاتی رہے گی، تو آج کے دن بھی، آج کے زمانے میں بھی امام کی شہادت ہمارے لیے حرارت ہونی چاہیے، جیسا کہ روایت کہہ رہی ہے۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ حسین کی شہادت میں ایسی حرارت ہے مومنین کے قلوب میں کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ حرارت باقی رہے گی، تا قیامت رہے گی۔ تو اب دیکھیے کہ ان کا کردار اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے ہیں۔ وقت عاشور، عصر سے پہلے روز عاشور، ہم دیکھتے ہیں کہ امام خطاب کر رہے ہیں دشمنوں سے کہ دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں، دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں، دیکھو میں جگر گوش رسول کا بیٹا ہوں۔ سامنے قرآن لاتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ میں نے کیا کیا، کون سے حلال کو حرام اور کون سے حرام کو حلال کر دیا، میں نے کوئی تمہارا نقصان کیا، کوئی تمہارا حق لے لیا، تمہارا مال یا تمہارے میں سے کسی کی جان لے لی، کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ہے کوئی جو میری تمہارے میں سے نصرت کرے، کوئی ہے کہ جو حرم کی حفاظت کرے، کوئی ہے۔ یہ بات حسین کی سن کر خاموش ہو گئے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ کچھ لوگ رونے تک لگے، کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ خیمہ گاہ سے بیبیوں کی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، حسین متوجہ ہوتے ہیں، بیبیوں کو خاموش کراتے ہیں، بیبیوں کو خاموش کراتے ہیں، لیکن ایک آواز ہے کہ آتی رہتی ہے، کہتے ہیں کہ اصغر کو مجھے دے دو، علی اصغر کو مجھے دے دو۔ اب جب اصغر کو ہاتھوں میں لے کر ہیں تو لوگ اشکیا سمجھتے ہیں کہ شاید پھر قرآن لے کر آ رہے ہیں، ہاتھ میں اصغر کو لیے حسین پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے قصور کیا ہے تو یہ بچے کیا قصور ہے، इस शिशमाए क्या का खुसूर है, लेकिन जो जवाब मिलता है वो जवाब वही था जब इंसान पस्त होता है तो देता है। शिशमाए की तरफ एक ऐसा तीर रवाना किया जाता है कि जो उसे ज़िभा कर देता है। बाप के हाथों पर शिशमा मुनकलिब होता है। इमाम ऐसी हालत में खून का फव्वारा जारी है, सर उठाते हैं आसमान की तरफ, खून को लेकर बुलंद करते हैं, आसमान की तरफ फेंकते हैं, कहते हैं कि मालिक तू इसका गवाह है, इसलिए ये मंजिल मेरे लिए आसान हो रही है। तू क्योंकि ये देख रहा है, इस तकलीफ को मैं बर्दाश्त कर सक रहा हूं। ये कैफियत में भी अल्लाह को याद करके अल्लाह को गवाह बनाना, ये इमाम की खूबी है। सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमको पता है कि अंदर खेमे में रबाब भी थी, कुर्बानियां सब ने दी, ज़ैनब ने भी दी और बीबियों ने भी दी, लेकिन रबाब जैसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। हुसैन पलट कर आते हैं, अपनी शमशीर के खिलाफ से छोटी सी कब्र खोदते हैं, खोद कर दफना देते हैं शिशमाए को, और लानत करते हैं उस कौम पर कि जिसने इस किस्म का जुल्म किया। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन खलबिन यनखलिबून।